दूसरा इतिहास अध्याय 27, योताम का राज्य, अध्याय 27 पद 1 और 2। जब योताम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सदोम की बेटी थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसका पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी किया। तो भी वो यहोवा के मंदिर में न घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। ये यशया की भविष्यवाणी में पाया है, अध्याय 27 पद 6। यो योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वो अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। इसके बारे में हमें अधिक नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त उसने जो किया वो राजाओं की पुस्तक में बताया गया है। उसने 16 वर्ष राज्य किया। वो केवल 41 वर्ष का था और 25 वर्ष की आयु में उसने राज्य संभाल लिया था। अध्याय 27 पद 9। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। इसके बाद हम अध्याय 28 में आते हैं। अगले अध्याय हम इतिहास का दूसरा भाग देखेंगे, क्योंकि हम इसराइलियों के बाबुल में बंधुआई में लिए जाने का पूर्व के इतिहास को पूरा कर लेंगे। आप जानते हैं कि पुराना नियम विभिन्न भागों में विभाजित है। पहली 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी है और उसके आगे की पुस्तकें देश के इतिहास की है। यहोशू से आरंभ करके देश में आने पर न्यायियों का समय और राजाओं का समय, जो नबूकदनेस्सर द्वारा बंधुआई में ले जाने तक का था। हमारे पास इतिहास की 2 और पुस्तकें हैं जो बाबुल की बंधुआई से वापस लौटकर आने के बाद का इतिहास बताती है। इसलिए दूसरा इतिहास हमें देश के निर्वासन से पूर्व का वर्णन देता है, जबकि निर्वासन के बाद का वर्णन एज़रा और नहमिया की पुस्तकों में मिलेगा। उसके बाद हम उन पुस्तकों को पढ़ेंगे जो कविता कहलाती है, आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। तब हम बड़े भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में जाते हैं। बड़े इसलिए कि उनकी पुस्तकें बड़ी हैं, इसलिए नहीं कि वे भविष्यवाणी करने में या अपनी स्थिति में मुख्य है, या इसलिए नहीं कि एक नबी दूसरे से बड़ा था। वे पुस्तक के आकार के आधार पर बड़े नबी कहलाए। फिर नबियों की छोटी पुस्तकें हैं जो छोटे नबी कहलाते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें छोटी हैं। जब हम कविताओं की पुस्तकों को पढ़ेंगे तब ये आवश्यक है कि आप उन्हें इतिहास से जोड़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पुस्तकें उसी समय लिखी गई थी। उदाहरण के तौर पर आयुब की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक लिखे जाने के समय ही लिखी गई थी। आयुब लगभग इब्राहिम के समय में ही रहता था। इस तरह ऐतिहासिक तौर पर वो बहुत पुरानी है। भजन संहिता वास्तव में तो दाऊद के राज्यकाल के समय में संकलित की गई थी, परंतु कुछ भजन मूसा के द्वारा, कुछ सुलेमान के द्वारा, कुछ आसाप दाऊद के मुख्य संगीतकार के द्वारा लिखे गए थे। जब आप नीति वचन देखते हैं तो वे सुलेमान के राज्यकाल के हैं। सुलेमान के गीत, जिसमें 1000 से ज्यादा सुलेमान ने लिखे थे। फिर हम यशया नबी को देखते हैं जो इतिहास की ऐसी दौर में, जिसे हम पढ़ रहे हैं, प्रकट हुआ। यरमिया के प्रकट होने का ऐतिहासिक समय भी यही है। आने वाले राजा में हम यरमिया के बारे में पढ़ेंगे। यरमिया ने जब भविष्यवाणी आरंभ की तब वो 17 वर्ष का लड़का ही था और इसकी भविष्यवाणियां इतिहास के समय में उपयुक्त है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इतिहास को अपने मन में रखें, क्योंकि नबियों को और उनके संदेश को समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों को जानना आवश्यक है जो यहूदा और इसराइल में थी, जब नबी उनके शत्रुओं द्वारा विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। इसलिए नबियों को ठीक से समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम इतिहास की मूल बातों को जानें, ताकि जब हम उन पुस्तकों को पढ़ें, तो नबियों के संदेश को हम पूरी तरह से समझ सकें। बहुत बार इतिहास स्पष्ट समझ में नहीं आता, परंतु फिर भी उसका अपना मूल्य है जो हमें नबियों को ठीक से समझने में सहायता करता है। परमेश्वर आपके हृदय को स्तुति और धन्यवाद से भरे, ताकि आप उसके कार्य और उसके विजय को अपने जीवन में देख सके। परमेश्वर करे कि आप चीजों को उचित दृष्टि से देख सके और उन्हें उनका उचित स्थान दे सके, ताकि आप पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें, उसकी शक्ति और महिमा को जानें और उसकी सेवा करें, ताकि आप अपने जीवन में उसके कार्यों को उनकी वास्तविक सुंदरता के साथ होते देखें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।